नमस्कार भारत, तारीख 18 नवंबर, दिन रविवार, मैं हूँ मानसी दास। सबरीमला में तनाव के माहौल के बीच दो नेता पुलिस हिरासत में, राज्य सरकार और भाजपा आमने सामने।
ऐसा विशाल दृष्टि का कोई दूसरा टेम्पल नहीं है, इसको खत्म करने के लिए मार्क्सिस्ट लोग का एक षड्यंत्र है।
चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में चर्चा गठबंधन की, अजीत जोगी ने कहा,
मैं मृत्यु को स्पर्श करना अच्छा मानूंगा बजाय इसके कि सांप्रदाय और फांसीवाद ताकतों की प्रतीक भाजपा से गठबंधन करूं।
और सुनाएंगे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के गोद लिए गांव अजनास का हाल।
आदर्श ग्राम, वो आदर्श ग्राम जहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं है, बस जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पे हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ, बस मजाक ही बन के रहेगा हमारा आदर्श ग्राम।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सर्वप्रिया सांगवान के साथ। अमेरिका के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ट्रंप सरकार अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। प्रवक्ता हीदर नॉरेट ने कहा कि इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में पिछले महीने हुई इस हत्या के बारे में अभी भी कई सवालों का जवाब नहीं मिला है। इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि CIA का मानना था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हत्या का आदेश दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि हत्या का आदेश देने वालों की जिम्मेदारी भी तय हो और सऊदी अरब के साथ महत्वपूर्ण सामरिक संबंध भी बने रहें। कांगो में इस्लामिक विद्रोही समूह एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज और कांगो सेना समर्थित संयुक्त राष्ट्र पीस कीपर्स के बीच संघर्ष के बाद कांगो में इबोला वायरस के घातक प्रकोप को रोकने की कोशिशें निलंबित करनी पड़ी हैं। फ्रांसीसी समाचार एजेंसी ने बताया कि कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय गतिविधियों को निलंबित कर दिया है और आपातकालीन केंद्र भी बंद कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि लड़ाई में एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा है जहां उसके 16 कर्मचारी रह रहे थे और अब उस इमारत को खाली करवाया जा रहा है। अगस्त से बेनी में इबोला के प्रकोप ने 200 से अधिक लोगों की जान ली है। युगांडा में सेना और पुलिस को शहर लीरा में तैनात करना पड़ा जब क्रोधित भीड़ ने एशियाई लोगों के घरों और दुकानों पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह है भारतीय मूल के दो पुरुषों पर एक लड़के की हत्या का आरोप। 11 साल के डिकेंस ओकोलो के अंतिम संस्कार के कुछ ही वक्त बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ एशियाई लोगों को पुलिस स्टेशन में शरण लेनी पड़ी क्योंकि लोगों ने उनके घर जला दिए और लूटपाट की। लड़के की मौत के आरोप में दो भारतीय पुरुष हिरासत में हैं और अभी उन्हें अदालत में पेश किया जाना बाकी है। फ्रांस के गृह मंत्रालय का कहना है कि तेल पर टैक्स में बढ़ोतरी और जीवन यापन की बढ़ती लागत को लेकर करीब 10 लाख लोगों ने पूरे फ्रांस में प्रदर्शन किया। सुवोय शहर में एक 60 साल की प्रदर्शनकारी महिला की मौत भी हो गई। मंत्रालय का कहना है कि देश भर में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और उनमें से 5 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने 38 लोगों को हिरासत में लिया है। हाईविज नाम के इस आंदोलन के समन्वयक फैब्रिस श्लेगल ने कहा कि प्रदर्शनकारी सरकार को एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं।
Au-delà du prix du carburant, hein, qui était l'élément déclencheur, c'est quand même, si on regarde bien ce qui se passe depuis
तेल की कीमत ने तो आंदोलन छेड़ा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले 10 साल से फ्रांस में क्या हो रहा है? हमें बस टैक्स मिले हैं और कम से कम सेवाएं। तो अब अपने टीवी के सामने सोफे पर आराम से बैठना छोड़िए, अब वक्त है कुछ करने का, अब वक्त है उठने का। आंदोलन के समन्वयक फैब्रिस श्लेगल के शब्द। लंदन में पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों ने 5 पुलों पर घंटों तक जाम लगाए रखा क्योंकि वे जलवायु परिवर्तन पर सरकारी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस ने 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां की। आयोजकों का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन में 6,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस ग्रुप का नाम एक्सटिंक्शन रेबेलियन है। इनका कहना है कि बढ़ते संकट को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को खत्म करने के प्रयासों को तेज करना होगा। ग्रुप की प्रवक्ता गेल ब्रेडबुक ने कहा,
This is an act of mass civil disobedience. There are thousands of people in London. This is the start of an international rebellion.
ये एक अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह की शुरुआत है जो पर्यावरण संकट पर कार्रवाई ना होने की वजह से हो रहा है और अब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन और संकट ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में किसी और समय कहीं और किसी और के साथ होने वाला है। ये हमारे घर आ गया है। ग्रुप की प्रवक्ता गेल ब्रेडबुक के शब्द। मालदीव के राष्ट्रपति चुनावों में आश्चर्यजनक रूप से इब्राहिम मोहम्मद सोली की जीत हुई है। उन्होंने भारत को लेकर कहा कि वे भारत को कर्ज से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे जिसमें से ज्यादातर चीन का बकाया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारत के दक्षिणी राज्य केरल से, जहां सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जारी तनाव के बीच अब सत्ताधारी वामपंथी सरकार और भाजपा आमने सामने हैं। भाजपा के राज्य महासचिव के सुरेंद्रन को कल देर शाम नीलाक्कल में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वो रात में मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले हिंदू एकावेदी की अध्यक्ष केपी शशिकला को भी इसी आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके विरोध में भाजपा आज सड़कों पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर पिछली बार के मुकाबले इस बार सबरीमला में भक्तों की संख्या भी कम दिख रही है। सुनिए केरल के पत्तनमतिट्टा से हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले 36 घंटों में केरला में हिंदुत्ववादी दलों से जुड़े दो नेताओं के सुरेंद्रन और केपी शशिकला को हिरासत में लिया गया है। दोनों नेता रात के समय ये कहते हुए सबरीमला जाने की कोशिश कर रहे थे कि वो स्वामी अय्यप्पा के भक्त हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस का कहना है कि मौजूदा तनाव के मद्देनजर रात के समय किसी को भी सन्निधानम में ठहरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सन्निधानम में भक्तों के ठहरने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अक्टूबर में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50 साल से कम उम्र की महिलाएं मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी तो उन्हें बहुत सारे पुरुष हमला करने आ गए थे। पुलिस का मानना है कि हमला करने वाले कुछ लोग सन्निधानम में रुके थे। बीजेपी के केरला अध्यक्ष श्रीधरन पिल्ले ने बताया,
सुरेंद्रन
आध्यात्मिक कार्यों का पालन करने के बाद सबरीमला जा रहे थे, लेकिन पुलिस पूजा करने के अधिकार का उल्लंघन कर रही है और यात्रा के अधिकार पर भी रोक लगा रही है। हम हड़ताल नहीं बुलवा रहे हैं क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ होती है और हमने हाईवेज पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। ये थे श्रीधरन पिल्ले के शब्द। शुक्रवार को हिंदू ऐक्यवेदी के अध्यक्ष केपी शशिकला को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद हिंदुत्ववादी दलों ने शनिवार को हड़ताल बुलवाई थी। शशिकला रात को सन्निधानम के पास पहुंची थी और पुलिस के नए नियमों के तहत उन्हें वहां रुकने की इजाजत नहीं दी थी। उनके हिरासत में लिए जाने के बाद सबरीमला कर्म समिति के SJR कुमार ने BBC से कहा था,
दुनिया में ऐसा एक ही टेम्पल है जहाँ क्रिश्चियन को, मुस्लिम को, हिंदू को, कोई भी हो, किसी को भी आ सकता है, दर्शन कर सकता है, पूजा कर सकता है, सब कर सकता है। तो इतना बड़ा सबरीमला का टेम्पल है, उतना बड़ा केवल विचार का टेम्पल है, सबको एक ही जैसा दिखता है और भगवान और भक्त एक ही जैसा है, इसलिए उधर दिखा है तत्व मस्ती, दैट मीन्स जो मैं हूँ आप भी है। ऐसा विशाल दृष्टि का कोई दूसरा टेम्पल नहीं है। इसको खत्म करने के लिए मार्क्सिस्ट लोग का एक षड्यंत्र है।
श्रीधरन पिल्ले और SJR कुमार का आरोप है कि केरला की वाम मोर्चा सरकार ने उनके कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि सबरीमला में भक्तों को न आने देने के लिए सरकार ने वहां पीने के पानी और शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं की है। लेकिन पंबा में मंदिर जाने वाले यात्रियों का कुछ और ही कहना है। तिरुपति से आए पूर्व बैंक कर्मचारी रामकृष्णा ने बताया,
मैं हर साल आता हूँ तो इसके पहले अच्छा था, मगर लास्ट टाइम बहुत बड़ा साइक्लोन आया इधर, इसके वजह से बहुत खराब हो गया और ये टाइम अरेंजमेंट्स भी अच्छा नहीं करे ये लोग, दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड हियर। तो इससे अच्छा बेहतर होना था, पीने के पानी व्यवस्था इतना अच्छा नहीं है।
वहीं कर्नाटका के मंड्या से आए राजशेखर का कहना था,
अच्छा नहीं है सर, ಆದ್ರೆ ಸಬರಿಮಲೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಈ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು
ಯಹಾ ಅಚ್ಚಾ ಇಂತಜಾಮ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ, ಯಹಾ ಗರಂ ಔರ್ ಠಂಡಾ ಪಾನಿ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಶೌಚಾಲಯ ಕಿ ಕೋಯಿ ಸಮಸ್ಯಾ ನಹಿ ಹೈ। हम करीब 15 साल से यहां आ रहे हैं और पहले के मुकाबले आज काफी बेहतर इंतजाम है। ये थे राजशेखर के शब्द। जाहिर है कि भक्तों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी ये पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं हुए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए पंबा में अभी भी काम चल रहा है, लेकिन जैसा साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मंडला महीने के पहले दिन उतने भक्त नहीं थे जितने पिछले सालों में सबरीमला में दिखे थे, शायद इसलिए भी कि ये अब विवादग्रस्त जगह बन गई है। इमरान कुरैशी, BBC, पत्तनमतिट्टा, केरला।
इधर आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सामाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव को पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस साल 29 अगस्त से ही उन्हें उनके घर पर नजरबंद रखा गया था। नजरबंद में रखने की समय सीमा कल खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता सर्वप्रिया सांगवान।
वरवरा राव के परिवार ने बीबीसी संवाददाता दीप्ति बतीनी को बताया कि पुलिस ने उन्हें जानकारी दी है कि वरवरा राव को पुणे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वरवरा राव के वकील ने हैदराबाद हाईकोर्ट में पुणे पुलिस द्वारा पेश की गई ट्रांजिट वारंट को चुनौती दी थी। वकील का कहना था कि ये वारंट मराठी में था और इस कारण इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने वरवर राव के वकील की दलील को सुनने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने शनिवार शाम उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। वरवरा राव के भतीजे वेणुगोपाल का कहना है कि शनिवार शाम को पुणे पुलिस आई थी, ना तो उनके पास नया वारंट था और ना ही हाईकोर्ट का आदेश था। उनका कहना था कि इसके लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, ये गैर कानूनी काम है जो पुलिस ने किया है। इस साल जनवरी में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक वरवरा राव भी थे। उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें नजरबंद रखने का फैसला सुनाया था। तब से ही 29 अगस्त से वरवरा राव को उनके घर पर नजरबंद कर रखा गया था।
इस मामले पर ताजा जानकारी के लिए bbchindi.com के साथ बने रहिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 72 सीटों पर मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब से कुछ घंटों बाद थमने वाला है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले 2 दिनों में बात मतदान से आगे बढ़कर अब सरकार बनाने पर आकर टिक गई है। अब राजनेता इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए कौन किसे समर्थन देगा। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी इस बार बहुजन समाज पार्टी और सीपीआई के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरे हैं। जब यह गठबंधन बना था उसके साथ ही इस बात की भी कयास लगने लगे थे कि यह गठबंधन राज्य की 90 में से कितनी सीटों पर असरकारक होगा। अब जबकि 18 सीटों पर मतदान हो चुका है और शेष बची हुई 72 सीटों पर मंगलवार को मतदान होना है, तब छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए गठबंधन की बात फिर से शुरू हो गई है। अजीत जोगी जिस मरवाही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भाजपा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अजीत जोगी को अपना मित्र बताते हुए उनके भाजपा में शामिल न होने का दुख जताया।
हमारे अजीत जोगी जी को क्या हो गया? अरे आपने छोड़ा था, राजनीति करने का मन था तो आ गए होते बीजेपी की तरफ। काहे काहे को झूठे परेशान हो रहे।
राजनाथ सिंह का बयान आया तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने अजीत जोगी और भाजपा की सांठ गांठ के आरोप लगाए।
मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि उसके मित्र हैं, उसके भाई हैं और उसी के भरोसे 15 साल सरकार वो चलाए और जितनी भी घटनाएं हुई है उसमें वो बराबर के भागीदार रहे हैं।
कुछ ही घंटों के भीतर अजीत जोगी के हवाले से ही टीवी चैनलों पर खबर आनी शुरू हो गई कि अगर भाजपा को कम सीटें मिलेंगी तो अजीत जोगी ने उन्हें समर्थन देने का वादा किया है। गठबंधन में शामिल बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती का बयान आया कि भाजपा को समर्थन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अजीत जोगी 8 धार्मिक ग्रंथों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे।
चाहे मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, मैं मृत्यु को स्पर्श करना अच्छा मानूंगा बजाय इसके कि सांप्रदाय और फांसीवाद ताकतों की प्रतीक भाजपा से गठबंधन करूं।
अजीत जोगी ने भाजपा पर हमला बोला तो भाजपा के प्रभारी अनिल जैन ने भी कह दिया कि भाजपा को किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।
योगी जी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई गंगा जल की कसम खाता है, कोई ग्रंथों की कसम खाता है, क्योंकि जनता को इन पर विश्वास नहीं है, इनके कहे पर विश्वास नहीं है और हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।
राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न बयान और न ही गठबंधन। 11 दिसंबर को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि सरकार बनाने के लिए किसी गठबंधन की जरूरत है भी या नहीं। तब ये राजनेता अपने अपने बयानों पर कितने टिके रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं। यहां के विदिशा चुनाव क्षेत्र से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सांसद हैं। उन्होंने अपने विदिशा के अजनास गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। क्या इन बीते सालों में ये गांव वाकई आदर्श गांव बना? क्या यहां के लोग इसके विकास से खुश हैं? बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार ने अजनास जाकर इस बात की पड़ताल की कि गोद लेने से कितना बदला अजनास। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
नहीं नहीं अब तो मुझे बिल्कुल नहीं मनना, बहुत गालियाँ पड़ती है, कहाँ करवाया काम, कुछ नहीं बस गोद ले लिया है। आसपास के गांव वाले मजाक भी उड़ाते हैं सर कि आदर्श ग्राम, वो आदर्श ग्राम जहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं है, बस जाने का रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोले वहाँ पे हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ, बस मजाक ही बन के रह गया हमारा आदर्श ग्राम।
12वीं क्लास में पढ़ने वाली दिव्या शर्मा हैं। दिव्या बता रही थी कि पहले उनका सपना था कि वो पढ़ लिखकर सुषमा स्वराज की तरह बनेंगी, लेकिन अब वो ऐसा कतई नहीं चाहती। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मध्य प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के गांव अजनास को गोद लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर पेश किया था। इस योजना के तहत देश भर में हर संसदीय क्षेत्र में एक एक गाँव को मॉडल के तौर पर विकसित करना था। गांव में जाने पर निराशा होती है कि मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और आदर्श ग्राम के नाम पर इस गांव में मामूली काम ही हुए हैं। अजनास मध्य प्रदेश के देवास जिले में है, लेकिन इसका संसदीय क्षेत्र विदिशा है। गांव के लोगों का कहना है कि जब सुषमा ने अजनास को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुना तो उम्मीद जगी थी, लेकिन धीरे धीरे सारी उम्मीदें टूटती गईं। काम के नाम पर गांव में पानी का एक नया टैंक बना है, एक छोटा सा पार्क बना है और एक सामुदायिक भवन। इस गांव में छोटा सा बाजार भी है। बाजार के बीच में लोग ठेले खोमचे लगाते थे, जिसे अतिक्रमण का हवाला देकर हटा दिया गया। इसे लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे ठीक मानते हैं तो कई लोग इसे गरीबों के पेट पर लात की तरह देखते हैं। सुमंत्रा हरियाले गांव के सामुदायिक भवन में अगरबत्ती बनाती हैं। सरपंच ईश्वर सिंह ने बताया कि यह सामुदायिक भवन आदर्श ग्राम योजना के तहत ही बना है। इसमें अगरबत्ती बनाने की मशीन भी इसी योजना के तहत आई है। हालांकि सुमंत्रा बहुत खुश नहीं है।
हमारे ये मार्केट में गरीब की दुकान थी नी, वो भी तोड़वा दिया और वहाँ पे ग्राउंड बनवा दिया है। गरीब लोग हम वैसे ही फिर रहे हैं, कोई कोई, और हमारा तो मकान भी नहीं लिया है, बंधा हुआ है।
करीब 6,000 की आबादी वाले इस गाँव में एक सरकारी स्कूल है। स्कूल की एक ही इमारत में 800 बच्चे पढ़ते हैं। इन 800 लड़के लड़कियों के लिए मात्र 2 शौचालय हैं। शौचालय से तेज बदबू आती है। उसी के बगल में क्लासरूम और प्रिंसिपल का चेंबर है। एक शिक्षक ने तो तंज कसते हुए कहा कि शौचालय से आने वाली बदबू आदर्श ग्राम की महक है। बीजेपी की मध्य प्रदेश प्रवक्ता राजू मालवीय से कहा कि गांव आकर बहुत निराशा हुई तो उनका जवाब था, ऐसा तो नहीं है भैया कि कुछ काम हुआ ही नहीं है, सुषमा जी बीमार रही हैं, इस वजह से कुछ काम नहीं हो पाए होंगे। सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 2 दिन प्रचार करने आ रही हैं। काश सुषमा स्वराज अपने गोद लिए गांव अजनास के स्कूल में भी एक बार आती। रजनीश कुमार, BBC अजनास।
और अब बात राजस्थान की। यहाँ भी विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस पार्टी अब भी प्रत्याशी चयन के काम में उलझी हुई है। इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह को उतारने का ऐलान किया है। मानवेंद्र सिंह हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
कहीं सत्तारूढ़ बीजेपी में बगावत है तो कहीं कांग्रेस में विद्रोह। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद दोनों प्रमुख दलों में घमासान मचा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री राजे ने शनिवार को अपनी पारंपरिक सीट झालावाड़ जिले में झालरा पाटन से पर्चा दाखिल कर दिया। यह चौथा मौका है जब वसुंधरा राजे झालरा पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ रही है। वे झालावाड़ से 5 बार सांसद रही है। अभी उनके पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ से सांसद है। कांग्रेस ने इस बार मुख्यमंत्री राजे को उनके चुनाव क्षेत्र में घेरने की योजना बनाई है। इसके लिए कांग्रेस ने बीजेपी से सांसद रहे मानवेंद्र सिंह को राजे के सामने खड़ा करने का ऐलान किया है। मानवेंद्र अभी पाकिस्तान की सरहद से लगे बाड़मेर की शिव सीट से विधायक हैं। मानवेंद्र ने मीडिया से कहा, यह एक बड़ी चुनौती है।
बड़ी चुनौती है, मैंने तो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं करी थी, परंतु श्री राहुल गांधी जी और चुनाव कमेटी ने निर्णय लिया है, फैसला करा है, उसका मैं स्वागत करता हूं और मुझ पर जो विश्वास जताया है उसका मैं आभारी हूं। चुनाव एक अच्छा स्वच्छ चुनाव लड़ेंगे और जो स्वच्छ राजनीति लानी है उसके आधार पर लड़ेंगे। मुझे तो समाचार पत्रों और सूचनाओं के माध्यम से पता चला कि ये घोषणा हुई है। स्वागत के संदेश और बधाई के मैसेज झालरापाटन झालावाड़ से आ रहे हैं अन्य कार्यकर्ताओं के नेताओं के, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ अच्छी तरह से स्वागत किया जाएगा।
मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह कभी बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शुमार किए जाते थे, लेकिन बाद में बीजेपी से नाता टूट गया। पिछले माह जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने झालावाड़ में रैली की तो मानवेंद्र मंच पर बैठे दिखाई दिए थे। कांग्रेस ने जब मानवेंद्र का नाम घोषित किया, मुख्यमंत्री राजे झालावाड़ में रोड शो कर रही थी। मुख्यमंत्री इस रोड शो में लोगों से मुखातिब हुई और पूछा, क्या कांग्रेस यहाँ कोई जाति धर्म का खेल खेलना चाहती है?
क्या ये राहुल गांधी का खेल खेलेंगे? क्या ये जाति का गेम खेलेंगे क्या ये मजहब का गेम खेलेंगे, पर मुझे अभी समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा गेम खेल रहे हैं। आपको मालूम है क्या? आपको समझ में आ रही है?
बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक गजेंद्र शेखावत कहते हैं कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने झालरापाटन में बीजेपी की जीत पुख्ता कर दी है।
केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वसुंधरा राजे जी को कम से कम अपने चुनाव क्षेत्र में जाने के कि नॉमिनेशन के बाद में सीधा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़े ऐसी परिस्थिति उन्होंने हमको दी है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
प्रेक्षक कहते हैं कि परिणाम जो भी हो लेकिन अब मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कहते हैं। अखबारों के पन्ने पलटकर सर्वप्रिया सांगवान स्टूडियो में आ गई हैं। सर्वप्रिया बताएं क्या है आज की अहम खबरें।
मानसी, दैनिक भास्कर की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं देख रही हूँ, उसमें बताया गया है कि एक साल में 25 जगहों के नाम बदले जा चुके हैं भारत में और 48 के जो प्रस्ताव है पेंडिंग है। और आप सोचिए, इसमें इन्होंने एक पूरी हेडलाइन लगाई है कि माया की राजनीति में 15 साल में 6 बार बदला हाथरस का नाम। तो यानी कि 1997 में मायावती को महामायानगर कर दिया गया, फिर कल्याण सिंह आए हाथरस कर दिया गया, फिर मायावती ने महामायानगर किया, फिर 2006 में मुलायम सिंह ने हाथरस किया, फिर 2007 में महामायानगर हुआ और अखिलेश ने 2012 में हाथरस कर दिया। तो ये जो पूरा ये नाम बदलने की राजनीति चल रही है बहुत टाइम से चल रही है, अभी 48 और पता नहीं कहाँ कहाँ बदले जाएंगे। एक और जो खबर है ये है अमर उजाला की, इन्होंने बताया है कि जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है उन्होंने अब देश में 50,000 वर्ग मीटर तक की बड़ी निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की शर्त को ही खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, अब परियोजना प्रस्तावक को भवन या अन्य निर्माण परियोजना के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकरण के बजाय जिला पंचायत और नगर निगम जैसे स्थानीय प्राधिकरण से ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी, और इसके अलावा एक इकोनॉमिक टाइम्स की एक मैगजीन आती है जो शायद ये संडे को ही निकालते हैं, तो उसमें बताया कि जो 20 साल से जो भारत का एक सपना है कि वो खुद एक पैसेंजर जहाज बनाए, यात्री जहाज बनाए, अब शायद वो पूरा होता दिख रहा है, उसको लेकर उन्होंने थोड़ा छापा है कि किस तरीके से अब ये निर्माण आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा आलिक पद्मसी को इंडियन एक्सप्रेस में आलिक पद्मसी के लिए एक ऑबिचुरी लिखा गया उन्हें याद करते हुए उन रमा बीजापुरकर ने। इसके अलावा कृष्णा, टीएम कृष्णा का जो कॉन्सर्ट था जो कैंसिल कर दिया गया था उसके बाद, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसे उन्हें बुलाया और फिर से कॉन्सर्ट कराया, वो कल पूरा हुआ जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे।
उसके बाद टीएम कृष्णा काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे।
द हिंदू की एक देखिए मानसी, जो वायु प्रदूषण है वो किस तरीके से दिल्ली NCR में और पूरे देश में किस तरीके से फैल रहा है, लेकिन हिंदू ने जो बताया है अपनी एक स्टडी के हवाले से कि 90% जो नागरिक है उन्हें पता है एयर पोल्यूशन के बारे में, लेकिन उनको ना पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या असर होगा, लेकिन बस ये पता है कि एयर पोल्यूशन होता है।
जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद सर्वप्रिया। और अब एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जिन पर बीते सप्ताह पाकिस्तान में चर्चा रही। सुनते हैं उर्दू प्रेस रिव्यू जिसे तैयार किया है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने और सुना रही हैं बीबीसी संवाददाता भूमिका राय।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते इमरान खान का एक बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हालात के अनुसार यू टर्न न लेने वाला कभी सफल नेता नहीं हो सकता। उनका ये बयान न केवल सारे अखबारों में छा गया बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनका ये बयान वायरल हो गया और लोग उनके इस बयान के बारे में खूब लिखने लगे। अखबार जंग के अनुसार इमरान खान का कहना था, यू टर्न न लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता है और जो यू टर्न नहीं लेना जानता उससे बड़ा बेवकूफ लीडर कोई नहीं होता। उनका कहना था कि इतिहास गवाह है कि नेपोलियन और हिटलर ने यू टर्न न लेकर ऐतिहासिक गलती की और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अखबार नवाए वक्त ने सुर्खी लगाई है, यू टर्न न लेने वाला लीडर नहीं, यह एक रणनीति होती है, इमरान खान। इमरान खान के इस बयान का विपक्षी पार्टियां खूब मजाक उड़ा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान ने हिटलर की मिसाल देकर साबित कर दिया है कि वो खुद भी हिटलर ही हैं। वहीं मुस्लिम लीग की नेता सानिया आशिक ने कहा है कि क्या इमरान खान ये कहना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के इकलौते नेता हैं क्योंकि वो यू टर्न लेने में काफी महारत रखते हैं। इमरान खान के कैबिनेट में शामिल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी का भी खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। अखबार जंग ने एक खबर की सुर्खी लगाई है, फवाद चौधरी का 405 खरब का यू टर्न सामने आ गया। अखबार लिखता है कि अब यू टर्न कोई ऐब नहीं बल्कि एक हुनर बन गया है, इसलिए अब यू टर्न भी गर्व के साथ लिया जा सकता है और केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने इसकी शुरुआत कर दी है। अखबार के अनुसार फवाद चौधरी ने संसद में कहा था कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में बलूचिस्तान को 420 खरब रुपए की सहायता राशि दी है, लेकिन सिर्फ दो ही दिन बाद फवाद चौधरी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने बलूचिस्तान में केवल 15 खरब रुपए का योगदान किया है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शाकिब निसार का एक बयान भी पिछले हफ्ते सुर्खियों में रहा। अखबार दुनिया के अनुसार जस्टिस नासिर ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि देश के अहम पदों पर तैनाती करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और उसका निर्णय निजी दोस्ती के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित के आधार पर होना चाहिए।
और अब खेल की खबरें आदेश कुमार गुप्त से।
वेस्ट इंडीज में जारी आईसीसी महिला विश्व 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम की जीत का सिलसिला जारी है। पूल बी में शामिल भारतीय महिला टीम ने कल बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से करारी मात दी। जीत के लिए 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 19.4 ओवर में महज 119 रन पर सिमट गई। भारत की जीत में ऑफ स्पिनर अनुजा पाटिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी ने नाबाद 39 रन बनाए। उनके अलावा एशलीग गार्डनर ने 20 और सलामी बल्लेबाज बेथ मुनी ने 19 रन बनाए। इससे पहले भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 167 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधना ने 83 रनों की धुआंधार पारी खेली। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने केवल 27 गेंदों पर 43 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के जमाए। भारत की बाकी कोई भी खिलाड़ी 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच सकी। भारत की जीत के बाद उपकप्तान स्मृति मंधना ने कहा कि आज की जीत में अपना योगदान देकर वो बेहद खुश हैं।
First 3 matches I was getting start in last 2 matches but was not able to convert it. So I really wanted to get out there and get the runs for my team. So really glad that I could do it today.
इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें भी तय हो गई हैं। पूल ए से मेजबान वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, जबकि पूल बी से भारत ने शीर्ष पर रहते हुए और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। आज पूल ए में मेजबान वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड आमने सामने होंगी। इस मैच के आधार पर तय होगा कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम किसका सामना करेगी।
और अब कार्यक्रम में आपसे विदा ले उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया सांगवान से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ट्रंप सरकार अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। कांगो में इस्लामिक विद्रोही समूह एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज और कांगो सेना समर्थित संयुक्त राष्ट्र पीस कीपर्स के बीच संघर्ष के बाद कांगो में इबोला वायरस के घातक प्रकोप को रोकने की कोशिशें निलंबित करनी पड़ी हैं। युगांडा में सेना और पुलिस को शहर लीरा में तैनात करना पड़ा जब क्रोधित भीड़ ने एशियाई लोगों के घरों और दुकानों पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह है भारतीय मूल के 2 पुरुषों पर एक लड़के की हत्या का आरोप। फ्रांस के गृह मंत्रालय का कहना है कि तेल पर टैक्स में बढ़ोतरी और जीवन यापन की बढ़ती लागत को लेकर करीब 10 लाख लोगों ने पूरे फ्रांस में प्रदर्शन किया। लंदन में पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों ने 5 पुलों पर घंटों तक जाम लगाए रखा क्योंकि वे जलवायु परिवर्तन पर सरकारी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मालदीव के राष्ट्रपति चुनावों में आश्चर्यजनक रूप से इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की जीत हुई है। उन्होंने भारत को लेकर कहा कि वे भारत को कर्ज से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम के 7:30 बजे। तब तक आपके साथ है बीबीसी हिंदी का .com पन्ना। फिलहाल मानसी दास को पूरी टीम समेत दीजिए अनुमति। नमस्कार।